ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ
ಜಯ.
ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ
ಜಯ.
ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ
ಜಯ. ಜೋಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯಕ್ಷ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ನಿಯಮ ಸಾಗರ್ಜಿ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, ಮುನಿ ಸಂಘ ಕಿ. ನಮೋಸ್ತು ಮಹಾರಾಜಿ, ನಮೋಸ್ತು.
धर्म एक आत्मकल्याण की वस्तु है. इसका प्रयोग केवल आत्मकल्याण के लिए ही होता है. जो चीज़ जिसके लिए होता है उस चीज़ को उसी के लिए प्रयोग करना, यह विवेकी जीवों का कर्तव्य होता है. यदि हमारे पास विवेक होता है तो हम कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान अवश्य रखते हैं. ये ज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी जीवों का लक्षण है. भव्य जीव का लक्षण है. विवेक ज्ञान को अपने आप में जन्म देना ये भव्य आत्मा के लिए ही संभव है, अभव्य आत्माओं को संभव नहीं है. भव्य और अभव्य ये जो दो प्रकार के जीव हैं इनका विषय हम अलग से कुछ समझेंगे, बाद में समझेंगे. ये परिस्थितियां भव्याभव्य की स्वाभाविक नैसर्गिक परिस्थितियां हैं. एक जीव भव्य क्यों हैं और एक जीव अभव्य क्यों हैं और उनका लक्षण क्या है, इस संबंध में यदि आप संक्षिप्त में जानना चाहेंगे तो इतना अवश्य हम इस संदर्भ में कह सकते हैं. भव्य जीव की विशेषता ये होती है कि वह अनादि काल से भूला भटका हुआ उन मार्ग पर अवश्य चल रहा है, विपरीत रास्ते पर चल रहा है. खुद को न समझने का यह परिणाम होता है. मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है इस दुनिया में, इसी बात को न समझने के फलस्वरूप वह भूला भटका समझा जाता है. स्वयं को जब भूल जाता है भव्यात्मा तो उन मार्ग पर चल सकता है, लेकिन उसका उन्मार्ग पर चलना कोई शाश्वत कार्य नहीं है। पहले चलता था ये बात अलग है, वर्तमान में भी चल रहा हो ये भी बात अलग है, भविष्य में भी ऐसा ही चलता रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इस प्रकार का लक्षण भव्य जीव का होता है। अभव्य जीव का लक्षण ठीक इससे विपरीत है। अनादिकाल से वह भी भूला भटका है, वर्तमान में भी वह भूला भटका हुआ है, और यह बात भी गारंटी से कह सकते हैं कि अनंत काल तक वह भूला भटका हुआ ही रहेगा। क्या फर्क रहा दोनों में? एक त्रिकालिक रूप से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में अपने स्वभाव को जान नहीं पाएगा, उसके भीतर विवेक की जागृति नहीं हो पाएगी, उसको सम्यक दर्शन आदि ये धर्म प्रकट नहीं हो सकते। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष, अनंत सुख आत्मा की ये उपलब्धि नहीं हो सकती। आत्मा का अनंत सुख उपलब्ध नहीं हो पाएगा। यही लक्षण अभव्य जीव का है। यदि आपको ऐसा लगता है इन दोनों लक्षणों को सुन करके, इन दोनों जीवों की परिभाषा को सुन करके, यदि मन में ये प्रश्न उठता है कि फिर हम कौन हैं, भव्य हैं कि अभव्य, इसको कैसे समझे और कैसे पहचाने, तो समझने पहचानने के लिए भी कोई कठिनाई नहीं है। सहज रूप से आप अपने आप को हम भव्य हैं या अभव्य हैं ये समझ सकते हैं। कैसे? अनादि काल से तो हम भूले भटके थे, इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं। वर्तमान में भूले भटके हैं या नहीं, क्या इसको जानना असंभव है? संभव है क्या असंभव है? संभव है। यदि हम सुधर रहे हैं, सुधरने की जिज्ञासा रख रहे हैं, सुधरने का प्रयास हम करते जा रहे हैं, और हमको मोक्ष तत्व के प्रति बड़ी आस्था है, श्रद्धा है, संसार शरीर भोग ये सभी सादी शांत हैं, मिले थे और कुछ क्षण बाद नष्ट होंगे, इसमें असली सुख की प्राप्ति मुझे नहीं हो सकती, मेरा सुख मेरे पास है, आत्मा का सुख आत्मा के पास होता है, भौतिक इंद्रिय विषयों से उपलब्ध जो सुख होता है वो सादी शांत होता है, आत्मा का सुख अनादि सादी अनंत होता है, सादी अनंत होता है ना, सादी यानी उसका आदि जरूर है, कभी न कभी प्राप्त होता है, और रहता है तो कब तक रहता है? अनंत काल तक रहता है। आत्मा का सुख ऐसा है, देखो इसी सुख से हम वंचित हैं अनादि काल से, सुख 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 कहते कहते हम बाहर भटक रहे हैं और बाहर ही सुख की खोज करते जा रहे हैं। यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, वो देगा ये देगा, शारीरिक सुख को ही तो हम खोज रहे हैं ना, सोमवार सोमवार गए तो क्यों गए, सोचो विचार करो किधर गए क्यों गए। ये तो सोमवार की बात हो गई, रविवार को भी किसी न किसी को आगे बना करके, निमित्त बना करके उसको भी हम शुरू करते हैं। और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 7 तीर्थंकर काफी हैं, बाकी दिनों में कहां कहां जाएंगे। 24 तीर्थंकर हैं, 24 दिन तो होते नहीं। यदि हफ्ते का आप ठहराव करते हैं और उसमें सभी तीर्थंकर नहीं आए, हमको 24 तीर्थंकर के सबके पास जाना है एक एक दिन, ऐसा सोच करके जाते हैं, तो हफ्ते को छोड़ करके महीने को ग्रहण करना पड़ेगा। एक महीने में 30 दिन तो होते ही हैं और उसमें 24 तीर्थंकर व्यवस्थित रूप से बैठ जाएंगे। एक एक दिन एक एक के पास जाना, किस लिए जाना, शारीरिक सुख पाने के लिए, अपने संसार के दुखड़े को व्यक्त करने के लिए, और उस अनुकूल अनानुकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए एक एक के पास रोज जाएंगे। यदि ऐसा भी करते हैं तो भी वह धर्म की कोटि में तो नहीं आएगा, क्योंकि यदि हमारी दृष्टि में सुधार नहीं है तो सृष्टि में कैसे सुधार हो सकता है। दृष्टि बदले तो सृष्टि बदले, दृष्टि बदले तो सृष्टि बदले, सृष्टि बदले तो सारी दुनिया बदली बदली सी लगे और हम भी बदली बदली सी लगे। दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदल सकती है, और हम दृष्टि बदलेंगे तो 4 लोगों की दृष्टि और बदल सकती है, पर हमारी ही दृष्टि बदल नहीं रही है, बदलने में परेशानी हो रही है या कठिनाई आ रही है, तो कैसे चलेगा। हम भव्य है कि नहीं, भव्य है, किस आधार से आपने अपने आप को भव्य निर्णय किया। बाहरी निमित्त मिलने से यदि हम भव्य कहलाते हैं तो अभव्य जीव को भी बाहरी निमित्त मिल सकता है, वो भी भव्य बन जाएगा। हाँ, मूलभूत बात तो यही है, हम अपने स्वभाव को जानने के प्रति रुचि रख रहे हैं, अपने स्वभाव को जानकर अपने आप में आने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ये हमारी विशेषता पहले नहीं थी, अब हमारे पास आ गई है। यही हमारा भव्यत्व का लक्षण है, हम परिवर्तनशील हैं, पहले जैसे थे अभी ऐसे हम नहीं हैं, हमारे में परिवर्तन शुरू हो गया है। शुरू हो गया है क्या, तटस्थ है, हो गया है, शरीर सुख की उपलब्धि के लिए, सांसारिक समस्याओं को दूर करने के लिए आयतनों का सहारा लेना ये आवश्यक है कि आत्मा के सुधार के लिए, आत्मा के सुधार के लिए सब कुछ करना है। आत्मा सुधर गई, अंतरंग दृष्टि बदल गई, अंतरंग सुधरा, अंतरंग बदला, बहिरंग सुधरा, बहिरंग बदला, तो अंतरंग में कुछ नहीं बदला, तो कुछ नहीं हुआ। जैसा अनादिकाल से परिस्थिति थी वैसी ही परिस्थिति अभी है और आगे भी रहेगी। हमको सुधार कहाँ पर करना है, यही बात पर जोर दे करके हमें अभी चलना है। सुधार कहाँ करना है, अंतरंग में या बहिरंग में? अंतरंग में। बहिरंग महत्वपूर्ण है या अंतरंग महत्वपूर्ण? मोक्ष की सिद्धि, धर्म की सिद्धि, सम्यक्त्व की सिद्धि, भव्यत्व की सिद्धि, सभी अच्छाइयों की सिद्धि अंतरंग में होता है कि बहिरंग में? अंतरंग में होता है। तो अंतरंग को ज्यादा पकड़ लो, उस पर ही ज्यादा जोर दो, उसके ऊपर ही ज्यादा चिंतन करो, उसके ऊपर ही ज्यादा विचार करो, उसको ही ज्यादा संभालो और उस पर ही अधिक से अधिक चलने का प्रयास करो। दृष्टि बदले तो सृष्टि बदले, या सृष्टि बदले तो दृष्टि बदले, ऐसा कहें। सारी दुनिया जब बदलेगी लास्ट में मैं बदलूंगा, सृष्टि बदल जाए तब दृष्टि बदलेगी हमारी, ऐसा कहोगे? नहीं, सृष्टि बदले या न बदले, मैं बदलूंगा, मेरी दृष्टि को मैं परिवर्तन करूंगा, और मेरी दृष्टि में परिवर्तन हुआ तो सृष्टि बदलना शुरू हो जाएगा। सृष्टि यानी सृष्टि में रहने वाले ये जीव राशि अनंत भव्य हमारे आंखों के लिए दिखाई दे रहे हैं, ये सृष्टि है, जन्मे हैं। सृष्टि का तात्पर्य ऐसा मत समझो कि इन जीवों को किसी ने उत्पन्न किया है, ये अनादि हैं, कौन उत्पन्न कर सकता है? हमको कोई बना नहीं सकता, हम क्या कोई स्टैचू हैं हमारे लिए बना के खड़ा कर दे? हम कैसे बन गए, हमारा शरीर कैसा बना, इस शरीर में जान कैसा आया, प्राण कैसे आए, इसका कभी विचार किया है? अपने को किसने बनाया? शरीर को किसने बनाया? हाँ, असली बात तो पता है, नाम कर्म ने हमारे शरीर को बनाया है, किसी आत्मा ने नहीं बनाया, बाहरी बाह्य आत्मा ने नहीं बनाया। हमारे शरीर को हमारे कर्मों ने बनाया है। नाम कर्म के कितने भेद हैं? 93 नाम कर्म के ही सबसे ज्यादा भेद हैं, 93 भेद हैं नाम कर्म के। इस नाम कर्म ने हमारे शरीर को बनाया, क्या क्या बनाया? कुछ कर्मों ने हमारे अंगों की रचना की, कुछ कर्मों ने हमारे उपांगों की रचना की, कुछ कर्मों ने हमारे शरीर में आवश्यक तत्व सप्त धातुओं की रचना की। ये कर्म ही बना सकता है, किसी बाह्य शक्ति के द्वारा ये नहीं बनता, आज विज्ञान प्रयास कर रहा है, वो ब्लड बनाना चाहता है। ब्लड दूसरे का क्यों ले, एक फैक्ट्री खोले, ब्लड तैयार करें और बीमारों को दे दें। ए ग्रुप वाला, बी ग्रुप वाला, सी ग्रुप वाला, जितने ग्रुप होते हैं उस ग्रुप के ब्लड को तैयार करके क्या फैक्ट्री में तैयार करके लोगों को ठीक नहीं कर सकते? बाहर का कोई व्यक्ति शरीर का अंश भी बना सकता है तो बनाए, दूसरे का क्यों लेते? ब्लड बैंक नाम दे करके ब्लड बैंक, ब्लड ब्लड का भी कोई बैंक होता है, पैसे का बैंक तो सुना था, अब ब्लड का भी बैंक आ गया। बैंक में हम ब्लड देते हैं और दान देने वाला भी कितना देखो दयालु करुणालु होता है, ब्लड दान देता है। देते समय विवेक भी होना ना, कहाँ देना, किसको देना, कैसे देना। देने वाले दाता को अगर विवेक नहीं है तो इसमें भी दोष लग सकता है कि नहीं? दोष लग सकता है, विवेकी सोच समझ करके काम करता है। वृत्ति इस चक्कर में नहीं पड़ता, अनुवृत्ति महावृत्ति। किसी मुनि महाराज के लिए कुछ ब्लड कम पड़ गया तो दूसरे महाराज देंगे? वृत्तियों के लिए ये ठीक नहीं है। अवृत्ति जो रहते हैं वो उनका काम है। अवृत्ति दयालु होता है दूसरे के ऊपर और ऐसा कुछ करता है तो वो बात अलग है, पर ये भी बात ध्यान में रखना है अपन को। ब्लड क्या दान की वस्तु है? इसको दान कह सकते हैं क्या? दान की वस्तु तो चार हैं, है ना? कौन कौन सी? आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और आवास दान। अभय दान नहीं, आवास दान। आवास दान ये सुपात्रों को देने योग्य चार प्रकार के दान के नाम हैं। ये चार किसमें दिए जाते हैं? सुपात्र को, कुपात्र को भी नहीं और अपात्र को भी नहीं, सुपात्र को दिए जाते हैं। सुपात्र तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हाँ, उत्तम सुपात्र, मध्यम सुपात्र और जघन्य सुपात्र। जघन्य सुपात्र सम्यक दृष्टि श्रावक, अविरत सम्यक दृष्टि, चौथा गुणस्थानवर्ती श्रावक जघन्य सुपात्र है। मध्यम गुणस्थानवर्ती साधक, प्रतिमाधारी, आरिका इत्यादि, ये सभी मध्यम सुपात्र हैं। और महाव्रत मुनिधारी उत्तम सुपात्र कहलाते हैं। इन तीन प्रकार के सुपात्रों में दान देने के लिए चार प्रकार की वस्तु हैं। रक्तदान क्या आहार दान में आएगा? आहार है क्या वो? नहीं। ये पांचवा दान कहां से आ गया? चार ही दान आगम में बताए गए हैं, ये पांचवी प्रकार का दान कहां से आ गया? हाँ, ये भी दान की वस्तु बन गई, लेकिन ये दान की वस्तु ही नहीं। दान की वस्तु तो पवित्र होती है। रक्त पवित्र है क्या? पवित्र है। सुपात्रों को दान देते समय अगर ये रक्त बहते हुए भी देख लें सुपात्र, तो अंतराय करने को बताया है। और ये दान की वस्तु कैसी हो सकती है? दाता जो दान दे रहा है उसके शरीर के किसी भी अंग से बहता हुआ रक्त देख ले तो उत्तम सुपात्र अंतराय करेंगे। अंतराय का विधान है, इसका मतलब देखने मात्र से भी जब भोजन त्यागा जाता है फिर ये दान की वस्तु कैसे? तो ये इसको दान मत कहो, आपको कहना हो कह लो उपकार की वस्तु है, दान की वस्तु नहीं। इसके द्वारा किसी का उपकार हो सकता है तो उपकार की वस्तु है, इसको दान दान कह करके इतना पवित्रता का स्थान, दान दान पवित्रता का स्थान क्यों मिला? अज्ञानता से। ये पहले काल में ऐसा कुछ नहीं था, कोई रक्तदान देता था नहीं। जब विज्ञान ने ये खोजा कि रक्त भी हर किसी व्यक्ति का दूसरे के लिए नहीं चलता और उसमें भी बहुत सारे वैरायटियां हैं, जब पता चला, ज्ञात हुआ, तब टेस्ट किया गया, जिस ग्रुप का रक्त जिसको होता है वही रक्त का ग्रुप दूसरे को हो उसको कम पड़ रहा हो, रक्त आवश्यक हो गया हो, देखे देखा तो वह व्यक्ति वह उसके माध्यम से वह उपकार में आ जाता है, यानी ठीक हो जाता है उसका। तब से जब से ऐसा हुआ कि ये चल सकता ये चल सकता और ये नहीं चल सकता, ये खोज जब हुई तो रक्तदान भी शुरू हो गया एक दूसरे को दान देकर के बचाने लगे। तो रक्तदान ये वृत्ति लोग नहीं कर सकते, एक वृत्ति दूसरे के लिए दान दे दे रक्तदान ये संभव नहीं। अवृत्ति अवृत्ति को देता है ये बात अलग है, पर उसको दान नाम भी देना जरूरी नहीं है। ब्लड बैंक कहा है तो बैंक कहूं ना, कौन मना करता है? ब्लड बैंक, बैंक में पैसा जमा करते हो, ब्लड को भी जमा करते जाओ, देते जाओ किसी को, शिविर भी लगते हैं इसके और शिविर में दिया जाता है, एक लेता है और एक देता है। लेने वाला कम से कम कैसा हो यह विवेक आपको रहना चाहिए, क्योंकि दान का फल भी मिलता है, केवल देने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। जो जीव अहिंसक हो, शाकाहार से हो, दयालु हो, सन्मार्ग पर चलता हो, सज्जन हो, परोपकार करता हो, चोर न हो, हिंसक न हो, इस दी हुई वस्तु का दुरुपयोग न करता हो, ये सब लक्षण देखोगे कि ऐसे ही बैंक में जमा करते जाओगे? विवेक से ही करना पड़ता है। अनिवार्य आपके लिए लगता है तो लगता है, पर विवेकहीन होकर के दिया जाएगा क्या? नहीं। यदि किसी का उपकार इसके माध्यम से होता है, आप उपकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्या आंख मीच करके देते जाओगे? नहीं। और देने के पश्चात किस में उसका उपयोग होता है, ये कोई गारंटी है? यदि गारंटी हो तो फिर भी ठीक है, गारंटी ना हो तो क्या करोगे? दोष तो लगेगा ना। दोष लगता है या नहीं लगता है, इसका विचार जो नहीं करेगा और अविवेकी समझा जाएगा। आपने बैंक में जमा कर दिया और डॉक्टर ने किसी चोर को ठीक किया, तो आपके रक्त से वो चोर ठीक हो गया और चोरी करने के लिए चला गया। आपके माध्यम से प्रेरणा मिली, शक्ति मिली, रक्त मिला, बल मिला और जोरदार चोरी हो गई। क्या इसको आप समझते हैं? मुझे तो चोरी का दोष नहीं लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब वो दी गई वस्तु किसमें उपयोग होगा, ये कोई गारंटी नहीं रहता है। तो आपको देने की जरूरत क्या है यदि विवेक आपके पास है तो? देना जरूरी नहीं है, और यदि देना जरूरी है ये समझते हैं तो फिर विवेक से दो। तो थोड़ा सोच समझ करके, दान उपकार के लिए ही होता है। जान बच गई उपकार हो गया, जान बच गई उपकार हो गया, उपकार के वस्तु को लेकर के अब क्या करेगा? केवल जान बच गई, अपने जान को सुरक्षित रखेगा, अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा? उसके बाद का जो उसकी क्रिया है, उसके बाद की उसकी जो क्रिया है, उस क्रिया का फल आपको भी मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है। सांप को दूध पिलाया, क्या काटना छोड़ेगा? सांप भी एक जीव है, उसको भी दूध पिलाओ बचाओ ये बात अलग है। हमने दूध पिलाया बचाया, इसलिए सांप को क्या घर में रखोगे? हमने ही दूध पिलाया, ये हमारा सांप है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, घर में रखो, पालो उसको। और मैंने दूध पिलाया है इसलिए मुझे मत काटना, वो कभी भी काट सकता है, अविवेकी है, कुछ भी हो सकता है। दूध पिलाने के बाद भी आप सांप को पालना नहीं चाहते, अपकार करेगा। ऐसा ही मनुष्य भी यदि अपने स्वभाव से चोरी करने का स्वभाव वाला है, पाप करने की बुद्धि वाला है, वो दूसरे को अनिष्ट ही करेगा, तो उसके लिए क्या करोगे? दान देकर पुष्ट करोगे? फिर चोरी जारी और बढ़ेगी, और बढ़ाने में सहयोग हमारा होगा, और उसका फल फिर किसको भोगना पड़ेगा? खुद को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए दान देने से पहले विवेकी बनो, फिर दान दो, ऐसा समझाया जाता है। विवेक की बात समझाई जाती है। ब्लड को आज विज्ञान बना नहीं पा रहा है, इसलिए दान लेना पड़ रहा है। ब्लड नहीं बना सकता, शरीर नहीं बना सकता, किसी को नहीं बना सकता। जो बनी बनाई है, जिसने बनाया है, उसका हम ले रहे हैं। किसने बनाया ब्लड को? कोई परमात्मा बैठे हैं बनाने वाले? नहीं है। हमारे शरीर में जो ब्लड तैयार हुआ, बाल तैयार हुए, ये अंगोपांग तैयार हुए, ये हर पार्ट तैयार हुआ, हड्डी तैयार हुई, ये सब नाम कर्म की देन है। और ये नाम कर्म की चर्चा दुनिया में किसी ग्रंथ में नहीं, वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक ग्रंथों में चर्चा नहीं, और अन्य कहीं किसी धर्मशास्त्रों में भी इसकी चर्चा उपलब्ध नहीं होती। तीर्थंकर भगवंतों ने जो उपदेश दिया है उन्हीं ग्रंथों में इसकी चर्चा है, और ये ब्लड है, ये नैसर्गिक है, किसी व्यक्तिगत बनाया हुआ नहीं। हम भी इसमें कारण हैं, हमारा ब्लड तैयार होने में हम कारण हैं कि नहीं है, हम कारण हैं और हमारे कर्म कारण हैं। हम और हमारे कर्म ये दो कारण हैं, और इन्हीं दो कारणों से बना हुआ है, हर चीज बनी हुई है। इसके माध्यम से हमारा जीवन चल रहा है, शरीर चल रहा है। ऐसा शरीर ये नश्वर है, ब्लड मिला तो सुखी हो गया क्योंकि स्वस्थ हो गए, ब्लड मिल गया बहुत सुख मिल गया, पुनः जीवन जीने लगे, जीवन मिल गया इसलिए सुखी है, जीवन का सुख मिला। पर क्या आत्मा का सुख मिला? शरीर को दुख मिलने पर भी आत्मा सुखी रह सकती है, ये सही है कि गलत है? शरीर को दुख मिलने पर भी आत्मा सुखी रह सकती है, ये सही है कि गलत है? सही है। जरूरी नहीं कि शरीर को दुख होने पर आत्मा दुखी हो जाए। यदि ऐसा नियम होता कि शरीर को सुख मिले बिना आत्मा सुखी नहीं हो सकता, शरीर को दुख मिले बिना आत्मा को दुख नहीं मिल सकता, यदि ऐसा नियम होता तो किसी को समाधि मरण कर लेना भी असंभव होता। और समाधि मरण के काल में कैसा भी मरण आ सकता है, स्वागत करना पड़ेगा ना। कैसा भी मरण आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति भी हो, वेदना भी हो, सुख हो, दुख हो, जैसा भी हो, उसको स्वागत करना पड़ेगा ना। यदि प्रतिकूल परिस्थिति है तो भी हम समाधि मरण की इच्छा रखेंगे कि नहीं, और समाधि मरण हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। बड़े बड़े रोग हुए, बड़े बड़े उपसर्ग हुए, शरीर पर प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित हुई, तब भी समाधि मरण धारण करके, समाधि का अर्थ होता है आत्मा को सुखी रखो, और शरीर को वो सुखी है दुखी है, सुख के कारण आए हुए हैं कि दुख के कारण, उस भूल जाओ, आत्मा को सुखी रखो। और आत्मा सुखी हो गई तो शरीर का सुख और दुख के जो बाहरी निमित्त हैं वो कैसे भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, समाधि की सिद्धि हो जाएगी। समाधि होती है कि नहीं होती? होती है। वृद्धावस्था में शरीर ठीक हो सबका गारंटी नहीं, आपका मरण कभी भी आए, किसी अवस्था में आ जाए, बचपन में आ जाए, जवानी अवस्था में आ जाए, वृद्ध होने पर आ जाए, किसी भी परिस्थिति में आ जाए, आप भगवान का नाम क्यों लेते? शरीर पर संकट आया तो हे भगवान, भगवान ही याद आते हैं, और शरीर का सुख मिल गया तो भगवान को भूल जाते हैं। कष्ट आने पर भगवान याद आते हैं और सुख मिलने पर भगवान को भूल जाते हैं, ये प्रवृत्ति ठीक है क्या? भगवान भी कहें कितनी स्वार्थी है, देखो मेरे को तभी याद करता है जब संकट आ जाए। और ये भक्त ऐसा समझता है कि संकट आए बिना भगवान आप किस काम में आते, संकट आने पर ही मेरे काम में आते हैं। वो भजन भी बनाते हैं ना, मेरे काम आते हैं। हाँ, हमारे बड़े दुख के दुखों में आप काम आते हैं। अरे उसी समय काम आता हूँ क्या? बड़े मामा बड़े काम आते हैं, बड़े काम के हैं। दुख और संकट आने पर ही काम में लोगे भगवान को, तो भगवान आपको भूल जाएंगे, ये भक्त ठीक नहीं है। मुझे तो तब बुलाता है जब स्वार्थ सिद्ध होता है। भगवान को याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं, वे भगवान के असली भक्त नहीं माने जाते। असली भक्त नहीं, जो सुख में भी याद करे और दुख में भी याद करे, वो असली भक्त होते हैं। और जो भक्त भगवान को सुख में भी और दुख में भी दोनों में याद करता है, उसके जीवन में दुख होगा ही क्यों? दुख हो सकता है? नहीं हो सकता। भगवान का नाम लेने मात्र से हमारे कर्म कट जाते हैं और दुख दूर होता है। तो दुख के काल में ही भगवान को याद करें ये जरूरी नहीं। दुख आप चाहते ही नहीं है तो सदा याद करो ना, सदा याद करो तो दुख आएगा नहीं। यदि ये समझते हैं कि भगवान के नाम से हमारा दुख दूर होता है, तो दुख को दूर करने के लिए केवल संदर्भवश ही क्यों, संकट आने पर ही क्यों? सदा दूर करो, सदा स्मरण करो और सदा ही अपने दुख को दूर रखो, अपने जीवन में आ ही ना पाए तो भी आता है कि नहीं आता? 24 घंटा नमोकार मंत्र मुंह में रहने पर भी संकट नहीं आएंगे, आएंगे। ये संकट कौन दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं कि कर्म दे रहे हैं? सुख नहीं आएगा क्या? सुख भी आएगा। तो ये कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं कि कर्म दे रहे हैं? सुख भी कर्माधीन है और दुख भी कर्माधीन। भगवान के अधीन क्या है? नो आंसर। भगवान के अधीन क्या है फिर? कुछ भी नहीं। तो भगवान को मानना व्यर्थ है क्या? व्यर्थ भी नहीं और कुछ भी नहीं, ये दोनों ही नहीं है तो फिर क्या है? फिर भगवान का सहारा हम क्यों लेते हैं? जो सुख दे रहा है उसका नाम ले ना। बड़े बाबाए नमः मत कहो, कर्माए नमः, पुण्य कर्माए नमः। जो सुख दे रहा है उसका नाम लेना क्या? जो दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, उनका नाम लोगे? हर पहलू से विचार करना पड़ेगा। जब सब प्रकार से हम विचार करेंगे तो हमारे ज्ञान में समीचीनता आएगी और फिर हम जो चलेंगे वो बिल्कुल फिल्टर रहेगा। ज्ञान की जरूरत है। हम कोई भी कार्य करते भी हैं, अच्छा हो या बुरा हो, परंपरा के आधार से करते हैं, रूढ़ी के आधार से। और ये रूढ़ी के आधार से जब हम करते हैं तो उस पर विचार नहीं कर किए हुए होते और न विचार कर रहे होते, न करते हैं। बड़े बाबा आपके सुख दुख को मेट नहीं सकते, सुख दुख को देने वाला जो भी है वो कर्म है और कर्मों को काटने वाला जो भी है वो बड़े बाबा नहीं, वो हम ही हैं। कर्म किसने किया, पाप कर्म किसने किया, हमने किया है, अपनी आत्मा ने किया है, भूलवश किया है, अज्ञानवश किया है, गलती से किया है कि जानबूझकर किया है, कुछ भी हो सकता है, जानबूझकर के भी कोई करता है और भूलवश भी करता है, ऐसे पाप इकट्ठे हो गए हैं, हमने ही किया है ना, पाप कर्म का कर्ता कौन? हम स्वयं आत्मा। तो इसको काटने वाला कर्ता कौन? मैं करूंगा, बड़े बाबा काटेंगे। हाँ, काटने के लिए बड़े बाबा चाहिए और करने के लिए तुम चाहिए। कैसे स्वार्थी, कैसा विचार। पाप कर्म से यदि दुख होता है तो हमने ही किया है, कभी न कभी किया है इतिहास में, हमने ही पाप किया है, बांधा है, उसका फल मिल रहा है। और इससे मैं बचना चाहता हूं तो बड़े बाबा को साधन बना लूं क्या, मैं अपने को साधन बना लूं, ये विचार तो करना पड़ेगा। और यदि बड़े बाबा हमारे कर्मों को काट सकते हैं और मोक्ष भेज सकते हैं तो मुझे तपस्या भी करने की क्या जरूरत है? भगवान से कहो, भगवान आप ही ध्यान कर सकते हैं, मैं कहाँ कर सकता हूँ, आप ध्यान करो मुझे मोक्ष हो जाएगा। ध्यान से कर्म कटते हैं, ध्यान के बिना तो कर्म कटने वाले नहीं। भगवान आप ध्यान करो मुझे मोक्ष मिलेगा। मिलेगा क्या, कि कभी किसी को ऐसा हुआ? पर क्या करना पड़ा आखिर उसको क्या करना पड़ा? स्वयं के कर्मों को काटने के लिए स्वयं ही ध्यान का आलंबन, स्वयं को ही ध्यान का आलंबन लेना पड़ा। यही है ना, सब कुछ अपने को ही करना पड़ेगा। दूसरे को हम अपने सुख के लिए ठेकेदारी दे देते हैं तो ये ठीक ही नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर बड़े बाबा का नाम ले कि नहीं ले, सुख में दुख में ले क्या नहीं ले, लेना व्यर्थ है क्या? ये प्रश्न उठता ही है, इसका क्या उत्तर? लेना चाहिए तो किस लिए लेना चाहिए? आत्मकल्याण के, आत्मा का कल्याण कैसे होता है? नाम लेने से आत्मा का कल्याण कैसे होता है? आत्मा का कल्याण का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है? आत्मकल्याण के लिए धर्म करना ठीक है, बड़े बाबा का नाम लेने मात्र से हमारे में क्या परिवर्तन आता है जिससे कि हमको सुख मिलने लग गया? कौन सा परिवर्तन आने से हमें सुख प्रारंभ हो गया? इतना कहो कि हम बड़े बाबा का नाम इसलिए लेते हैं, उनका नाम लेते ही मन में पवित्रता जगती है और मन की पवित्रता ही हमारे कर्मों के नाश में सहयोग मिलता है। हम अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने के लिए भगवान का नाम लेते हैं, जाप देते हैं, नमोकार मंत्र का जाप देते हैं, अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने के लिए तो सब कुछ करते हैं। और परिणामों की विशुद्धि पवित्र वीतरागी सर्वज्ञ हितैषी परमात्मा का यदि हम नाम नहीं लेंगे तो अन्य कौन है ऐसा जिसका नाम लेने से हमारे मन की पवित्रता बढ़ती है? कोई है? किसी का भी नाम लो, लेकिन प्रश्न ये है, चाहे आप साईं बाबा का नाम लो चाहे सही बाबा का नाम लो, फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। किसी का भी नाम लो, आपको प्रश्न, मूल प्रश्न ये है, मन की विशुद्धि किस में बढ़ती है ये देख लो। वीतरागता को देखने से, निर्दोष गुरु को, निर्दोष संयमी को देखने से या जिस किसी प्रकार के व्यक्तित्व को देखने से, जिस किसी प्रकार के व्यक्तित्व को देखने से विशुद्धि बढ़ेगी कि उसमें विशेष व्यक्तित्व को देखने से विशुद्धि बढ़ेगी? विशेष, क्या विशेष होना? जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, उनके पास गुण बहुत होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, गुणी जनों को देख करके मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए, अनुराग उत्पन्न हो जाए और उस तरफ मैं आकर्षित हो जाऊं, यही भावना भाते हो ना? तो गुणी कौन? परिग्रह रहित या परिग्रह सहित? परिग्रह रहित। परिग्रह कितने? 10 परिग्रह बहिरंग और आंतरंग परिग्रह 14। 10 और 14 ऐसे परिग्रह को जो त्याग कर चुके हैं उनके पास गुण ही गुण रहेंगे, रत्नत्रय गुण की उपलब्धि। देखो, पूजनीय अवस्था किसी आत्मा में आती है तो वह रत्नत्रय को धारण करने से आती है। रत्नत्रय रहित जीव वंदनी पूजनी नहीं होता, आदर के योग्य जरूर होता है। जय जिनेन्द्र कहो, सत्कार कहो, आओ बैठो, ये सब क्रियाएं जो होती हैं, माता पिता राजा कोई भी व्यक्ति हो, परिग्रह सहित जीव के प्रति आदर जरूर होता है। आदर एक व्यवहार है। इन जीवों को मंगल कहोगे, उत्तम कहोगे, शरण जाने के योग्य कहोगे। मंगल, उत्तम और शरण कितने हैं? 4 ही हैं। उसमें कौन आते हैं? अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित जीव आते हैं, आत्माएं आती हैं या सहित रहित? तो रहित, तो रहित जो रहित वह सही, जो रहित है वह सही है, जो रहित नहीं है वो सही भी नहीं है। मानवीयता किसी के पास हो सकती है और परिग्रह सहित मानवीयता भी देखने को मिल सकती है। मानवीयता आने मात्र से कोई पूज्य नहीं होता, मानवीयता के उपरांत भी अपनी आत्मा को संसार से निकालकर मोक्ष तक ले जाने के लिए जो आत्मा तैयार है उसमें मानवीयता के पश्चात एक आदर्श परमार्थमय जीवन भी होता है। उस परमार्थमय जीवन को जो विवेक पूर्वक जी रहे हैं वो आत्मा मंगल है, उत्तम है और शरण जाने के योग्य है। कितनी भी सज्जनता क्यों ना हो व्यक्ति के पास, अगर बहिरंग परिग्रह है तो क्या मंगल कहलाएगा, उत्तम कहलाएगा? एक लंगोटी भी धारण कर लो तो भी मंगल, उत्तम और शरण की कोटि में नहीं रखा गया है, क्योंकि मोक्ष की सिद्धि के लिए एक छोटा सा वस्त्र भी बाधक बन सकता है, बनता ही है। एक छोटा सा वस्त्र भी हमारे जीवन को पापमय बना सकता है, बनाता ही है। एक लंगोटी भी रहेगी तो उसकी चिंता रहेगी कि नहीं रहेगी, देखभाल करोगी कि नहीं, उसको धोगे कि नहीं, हिंसा होगी कि नहीं? तो जिसके जीवन में हिंसा हो, वह जीवन मंगल की कोटि में कैसे आएगा, उत्तम की कोटि में कैसे आएगा, शरण जाने योग्य कैसे कहलाएगा। संसार में सारे झगड़े वस्त्र तो वस्त्र से ही तो हैं, और वस्त्र किसका साधन, आत्म सुख का साधन या शरीर सुख का साधन। तो शरीर सुख को पूरी तरह से जो छोड़ चुके हैं वो मंगल या शरीर सुख को भोग रहे हैं वो मंगल। हाँ, यही विचार करना है, विवेक से विचार करके चलना है। हम नहीं छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, दुनिया नहीं छोड़ सकती, ऐसा निर्णय ले सकते। हम कोई अच्छा काम है नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आपके पास क्षमता नहीं है। पर दुनिया के पास भी क्षमता नहीं, क्या किसी के पास है? उसमें कोई ना कोई ऐसा पुरुषार्थ भी करने वाला है, और उस पुरुषार्थ से उनको हित होना ही है। पंचम काल में भी दिगंबर मुनि रहेंगे, ऐसा दिगंबरों ने कहा है, जो दिगंबर परमात्मा थे, वीतरागी थे, 24 तीर्थंकरों ने सब ने कहा, पंचम काल के अंतिम समय तक निर्दोष दिगंबर मुनि अपनी चर्या का पालन करने वाले, परिग्रह रहित, निस्वार्थ, जीवन को पाप से मुक्त रखकर चलने वाले, वस्त्र को भी पाप का कारण समझकर, ध्यान सिद्धि का बाधक समझकर, संकल्प विकल्पों का कारण समझकर, त्याग कर, दिगंबर रहकर आत्म साधना करने वाले, परमार्थ की सिद्धि में लगे हुए मुनि पंचम काल के अंतिम समय तक प्राप्त होंगे, मिलेंगे। ये परमात्मा ने ही कहा है, ये भविष्यवाणी परमात्मा की है। तो इसलिए एक वस्त्र भी जहां हो वहां असंयम होता है। असंयम का मतलब जीव हिंसा, प्राणी असंयम है। जीव हिंसा होगी, और यदि उसको धोगे भी नहीं तो विकल्प तो रहेगा कि इसके बिना मैं जीवन नहीं जी सकता, इसलिए आवश्यक है। विकल्पित रहेगा मन, और जब तक वह विकल्प है तब तक ध्यान सिद्धि नहीं होगी, और ध्यान सिद्धि नहीं होगी तो कर्म नहीं कटेंगे, कर्म नहीं कटेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। तो विकल्पों को दूर करने के लिए, वस्तु से कोई हिंसा होती हो या नहीं होती हो, होती हो उस वस्तु को भी छोड़ना और नहीं होती हो उस वस्तु को भी छोड़ना, निर्विकल्प रहने का प्रयास करना, ध्यान सिद्धि तभी होगी। अपने लिए क्या चाहिए? निर्विकल्पता चाहिए। निर्विकल्पता क्यों चाहिए? ध्यान की सिद्धि के लिए। ध्यान क्यों चाहिए? कर्म निर्जरा के लिए। कर्म निर्जरा से क्या होगा? मोक्ष होगा। मोक्ष हमारा अंतिम एम है, लक्ष्य, ध्येय है, वहां तक पहुंचना है, इसलिए ये सब कुछ चाहिए। तो ये चिंतन करो, संसार में छोड़ने लायक क्या और ग्रहण करने लायक क्या, चिंतन करना प्रारंभ करो। वस्त्र आज न कल छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो वस्त्र तुमको छोड़ेगा। आप नहीं छोड़ोगे, वो छोड़ने के लिए तैयार होगा। मुझे पकड़ के रखते हो, मैं तुमको छोड़ देता हूं। शरीर के प्रति मोह करोगे, शरीर के प्रति राग करोगे, तो ये राग द्वेष परिणाम शरीर के निमित्त से हो रहे हैं, इसलिए शरीर का मोह भी छोड़कर ध्यान करो, तभी मोक्ष की सिद्धि होगी, ऐसा कहा परमात्मा ने। शरीर का मोह भी छोड़ना है, और शरीर वस्त्र छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और शरीर का मोह बच गया, तो ये वस्त्र बचने जैसा ही है ये भी, तो उसको भी भूलना पड़ेगा। शरीर का मोह नहीं रखना, निर्मोही होकर के आत्मा को निर्विकल्प बनाने के लिए साहसी होना, साहस का पुरुषार्थ धारण करना। ध्यान में जब बैठेंगे मन की एकाग्रता आवश्यक है, आप समझते हैं। सभी श्रावक मेरे पास आकर के पूछते, महाराज हम ध्यान में तो बैठना चाहते हैं, बैठते भी हैं, बहुत प्रयास करते हैं, मंदिर में जाते हैं, माला भी हाथ में रहती है, लेकिन माला हाथ में आते ही मन घर में चला जाता है और हम मंदिर में रहते हैं। तो इससे अच्छा है आप घर में रहो, मन मंदिर में रहेगा। मन बहुत डेंजर है, घर जाए तो मंदिर आता है और मंदिर आए तो घर चला जाता है, चंचल है मन, बड़ा चंचल, उसको रोक नहीं पाते आप। और गृहस्थ अवस्था में मन को रोकना संभव है भी या नहीं, क्या इस प्रश्न का उत्तर कभी खोजा है? मन को कंट्रोल करना, एकाग्र करना क्या संभव है कि नहीं है? है संभव है, कुछ प्रमाण में संभव, कुछ हद तक संभव है। पूरी तरह से जैसे एक दिगंबर मुनि का मन रुक जाता है, निर्विकार रहता है, वैसी निर्विकारता आ सकती? नहीं आ सकती। विचार करो, आपका मन भागता क्यों है और दिगंबर मुनि का मन रुकता क्यों है? टैली करो, परिग्रह। मन भाग रहा है तो किस ओर भाग रहा है? परिग्रह की ओर। परिग्रह अपना है क्या? वो परिग्रह पराया है क्या? वही आत्मा है। परिग्रह हम हैं या दूसरी वस्तु है? दूसरी वस्तु है। तो दूसरी वस्तु की ओर इतना आकर्षित आपका मन है, किस कारण से है? हाँ, हमारी आत्मा उस ओर आकर्षित है, हमारे संस्कार मन पर आए हैं। आत्मा के संस्कार मन पर आए हैं और मन चंचल हो गया है और मन के ऐसे संस्कार आ गए हैं कि वो परिग्रह की ओर ही सदा भागता है। हम ही परिग्रह की ओर भागने के लिए राजी हैं तो क्या मन नहीं भागेगा? मूलभूत विषय, हमको मन को सुधारना नहीं है, हमको आत्मा को सुधारना है। हमारी आत्मा संस्कारित हो गया तो मन तो संस्कारित होगा ही होगा। आत्मा को संभाल लिया तो मन को संभालना कोई कठिन बात नहीं है। आत्मा को संस्कारित करो। आत्मा के भीतर जो ये विचारधारा है कि इसके बिना मेरा नहीं चलता, किसके बिना? वस्त्र आदि बाह्य परिग्रह के बिना मेरा नहीं चल सकता, ऐसा ही संस्कार डालोगे तो मन उधर ही भागेगा। और आप रात दिन यही संस्कार डालते हैं, इसलिए मंदिर में आने पर मन रुकता नहीं। आप संस्कार विपरीत डाल रहे हैं और मन रुके, ये कैसे संभव है? अगर श्रावक का मन रुक गया तो अद्भुत चमत्कार हो जाएगा, अद्भुत चमत्कार। क्या चमत्कार हो जाएगा? परिग्रह सहित अवस्था में भी अगर ध्यान की सिद्धि हो गई तो समझ लेना मोक्ष भी मानना पड़ेगा, हो जाएगा। क्या किसी जीव को वस्त्र सहित मोक्ष की प्राप्ति हुई है? हो सकती है? मोक्ष तो छोड़ो, ध्यान को ही सिद्ध करके बताओ। निर्मल ध्यान, वीतराग ध्यान, रागादि भावों से दूर वीतराग ध्यान की सिद्धि करके बताओ। नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? देखो, हो जाएगा तो हो जाए, बाय चांस। ट्राई करो, बार 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 ट्राई करो, ध्यान का अभ्यास करो, हो जाएगा एक दिन। जो ज्यादा से ज्यादा ध्यान का अभ्यास करेगा, एक न एक दिन परिग्रह में भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। प्रयास करके देखो ना, क्या होता है, क्या बिगड़ता है। बाय चांस हो गया, हो गया। अगर ऐसा कुछ होता तो केवली भगवान कहते मोक्ष मार्ग दो तरह से चलने योग्य है। एक वस्त्र सहित भी चल करके तुम केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, और तुम वस्त्र त्याग करके भी मोक्ष की सिद्धि कर सकते हो। दो प्रकार की विधि होती, तो ये विधि एक है या दो है? एक ही है। वस्त्र त्याग की विधि असली विधि है कि वस्त्र सहित भी विधि असली विधि है? वस्त्र त्याग की विधि ही असली विधि। और इसमें संशय शंका इत्यादि करते हुए बैठना और ये कहना कि परमात्मा ने ऐसा भी कहा होगा ना, ऐसा भी कहा होगा ना, ये परमात्मा की ही वचन है कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, परमात्मा के वचन है तो हैं, रहने दो वचन, पर सिद्ध करके तो हमको प्रयोग करके तो देखना देखना पड़ेगा। तो वस्त्र सहित भी मोक्ष होता है या नहीं सिद्धि करने के लिए प्रयास करो अपने जीवन में। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई एक तैयार हो जाए इस सभा में, वस्त्र सहित ध्यान सिद्ध करना है। इम्पॉसिबल। परमात्मा कहते हैं दिगंबर बनने के उपरांत भी ध्यान सिद्ध हो ये कोई गारंटी नहीं। जब ये कहते हैं तो वस्त्र सहित ध्यान सिद्धि की तो बात ही नहीं करते हो। दिगंबर बनने के बाद भी ध्यान सिद्ध हो, मन की एकाग्रता हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, कर्म निर्जरा हो, कोई गारंटी नहीं। दिगंबर क्या केवल शरीर को दिगंबर बनाना है? मन को, आत्मा को और शरीर को, दोनों को ही दिगंबर बनाना है ना। जब तक मूल में आत्मा, अंतरंग आत्मा दिगंबर नहीं बनती, तब तक वस्त्र छोड़ना व्यर्थ है। वस्त्र छोड़ने पर ही अंतरंग आत्मा दिगंबर हो सकती, ये बात अलग है, ये सिद्धांत है, नियम है ये। वस्त्र छोड़े बिना हम निर्विकार नहीं हो सकते। क्या ऐसा कहें? निर्विकार हुए बिना हम वस्त्र नहीं छोड़ सकते। विचार करें, सुन रहे कि नहीं? निर्विकार होने के बाद वस्त्र त्यागना ये ठीक है? अच्छा, निर्विकार होने के बाद वस्त्र त्यागोगे? गलत है वो, कोई गलत कहता कोई सही कह रहा, देखो ना। निर्विकारता पहले आती है, बाद में वस्त्र छूटता है, ये सही? या वस्त्र छूटने के बाद निर्विकारता आती है, ये सही है? देखो, कभी विचार नहीं किया है, कभी विचार नहीं किया आपने, इसलिए उत्तर देना मुश्किल पड़ रहा है। वस्त्र छूटने पर ही निर्विकारता आती है, ये सही है? निर्विकारता आने के बाद वस्त्र छूट जाए तो वस्त्र छोड़ने की क्या जरूरत है? वस्त्र रहते हुए निर्विकारता आ चुकी है और फिर वस्त्र क्यों छोड़ रहे हो? निर्विकारता तो ऐसी आती रहती है वस्त्र रहते हुए भी। टाइम हो गया? अच्छा, कुछ हो ही नहीं पाता, समय हो जाता है, डेढ़ डेढ़ घंटे भी कम पड़ रहे हैं। ज्ञान ऐसा ही है, जो कल्याणकारी ज्ञान होता है उसमें आत्मा रम जाए तो रम जाए, वो रमझान मानने लगता है उसी में। वस्त्र छोड़ने के बाद निर्विकारता आ सकती है, आवे या नियम नहीं। जहां जहां वस्त्र है वहां वहां विकार नियम से है, परंतु जहां जहां निर्विकारता है वहां वहां वस्त्र हो ही नहीं सकता, ये भी नियम है। निर्विकारता जहां है वहां वस्त्र हो ही नहीं सकता, और जहां वस्त्र है वहां नियम से विकार होता ही है। तो रागादि भावों से परे होने के लिए ये मोक्ष मार्ग का जो उपदेश दिया है, ये मोक्ष मार्ग का उपदेश ही धर्म की ओर हमें ले जा सकता है। ऐसे उपदेश को बार बार सुनना और आत्मसात करना आवश्यक है। आपके सारे प्रश्न भी रह गए और यहाँ पुस्तक का भी विषय रह गया। आगे बढ़ेगा, केस आगे बढ़ रहा है, जैसे कोर्ट का होता है वैसा ही हो रहा है। अगले डेट अगले तारीख पर आओ, तारीख पे तारीख। जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।